हरे राम हरे राम 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 हरे
हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के 18वां अध्याय के 63वें और 64वें श्लोक 63 और 64 श्लोक में निकालता हूं। जो 64 श्लोक है इसमें भी बहुत बोला, जिसमें कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें अपना परम आदेश फिर से सुना रहा हूं, जो सबसे ज्यादा गुह्य है, गोपनीय है, टॉप सीक्रेट है, और ये तुम अपने बक्ष्यामि ते हितम। तो इसका मतलब ये क्लियर होता है कि जो कृष्ण कहना चाह रहे हैं वो हमारे हित के लिए। देखिए, हम सब मनुष्य है और मनुष्य होने के नाते हमें भगवान ने सबसे ज्यादा बुद्धि दी और सबसे ज्यादा स्वतंत्रता भी दी है और सबसे ज्यादा सुविधाएं दी है। इसका मतलब है कि हम समस्त प्रकार की योनियों में सर्व श्रेष्ठ है और हम टॉप पर हैं। अब टॉप पर तो आ गए और टॉप पर आने के बाद जो हमें सुख सुविधाएं मिली और जो हमें स्वतंत्रता मिली, लेकिन कृष्ण इससे सेटिस्फाइड नहीं है। वो चाहते हैं इससे भी ज्यादा और हमारा भला हो, क्योंकि ये जो भी सुख सुविधाएं, धन दौलत पैसा प्रॉपर्टी संतान परिवार जो भी है, तो आइए थोड़ा सा हम आज थोड़ी सी हम डिस्कस करते हैं। कृष्ण कहते हैं भगवद गीता के 15वां अध्याय के 7वें श्लोक में, ममैव अंश जीवलोके, तुम मेरे क्या हो, अंश। आवाज समझो, इस संसार में नाना प्रकार के लोगों ने हमें अपना कहा, ये मेरा है, लेकिन उस मेरे के साथ एक रिश्ता जोड़ा है, उस मेरे के साथ एक रिश्ता जोड़ा है। कैसा? ये मेरा बेटा है, मेरा तो है लेकिन आज बहुत कुछ कान खुल जाएंगे, क्योंकि मैं इस पे सोचता रहता हूं, विश्लेषण करता रहता हूं, उसका निष्कर्ष निकालता रहता हूं। ये मेरा तो है लेकिन बेटा है, ये मेरी बेटी, मेरी तो है लेकिन बेटी है, ठीक है ना, ये मेरा पति है, मेरा तो है लेकिन पति है, ये मेरी पत्नी है, मेरी तो है लेकिन पत्नी, ये मेरा भाई है, मेरा तो है लेकिन भाई है, ये मेरी मां है, मेरी तो है लेकिन मां है, मेरा पिता है, मेरा तो है लेकिन पिता है, क्या नहीं, मेरा समधी है, मेरा दामाद है, मेरा नाती है, मेरा पोता है, मेरी पोती है, जो भी मेरे हैं उन सबों के साथ एक रिश्ते का टेक लगा हुआ है कि नहीं, मेरा बेटा है, बेटा है। तो ये जितने भी रिश्ते हैं मेरे हैं लेकिन रिश्ते हैं, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी बेटी, मेरा भाई, मेरा पिता, मेरी मां, तो जो भी ये मेरे हैं ये मेरे कर्म के फल है कि भाई मेरे कुछ कर्म थे तो बाबा यहां पर पुत्र के रूप में आया, लेकिन क्या है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। अब जरा सोचो, आज हम बहुत शांति में हैं क्योंकि पंखे चल नहीं रहे हैं, बिजली है नहीं, बिल्कुल वो भागवत का जमाना, जो जंगल में बैठे थे, ना बिजली थी ना पंखे थे, बैठे हुए हैं। तो ये जो भी मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरी पत्नी, ये कब से है? जब से वो हमारी लाइफ में है। सिंपली मान लो आज मेरी पत्नी है, मान लो, तो अगर मेरे ब्याह को 40 साल हुए तो वो 40 साल से मेरी पत्नी है। उससे पहले हो सकता मेरे सामने आई भी हो तो मैं पहचानता नहीं हूँ। आज जो आपका पति है वो कब से है? जब से आपका उसके साथ शादी हुई। मान लो 30 साल से शादी हुई है तो वो 30 साल से आपका पति है। जो आपका बेटा है कब से? जब से वो पैदा हुआ। मान लो आज उसकी उम्र 25 साल से, तो 25 साल से आपका बेटा है। मानते हो? मानते हो? समझ में आ रही है? अब कोई 20 साल, कोई 25 साल, कोई 30 साल, कोई 40 साल से हमारे हैं, है ना भाई? मेरा पति तो कब से हुआ? 40 साल से, जब से शादी है। मेरा बेटा है कब से? जब से वो पैदा हुआ। और आगे ये कब तक मेरे रहेंगे? अगर मैं बहुत बड़ा खींचूं तो 100 साल, बहुत बड़ा खींचूं, जो कि संभव नहीं है, लेकिन मान लो, तो 100 साल में से आज मान लो कि बेटा है और वो 30 साल का है, मतलब बाकी बच गए 70 साल। वो 70 साल तक बेटा रहेगा, लेकिन उस बीच मैं चले जाऊं या वो चले जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो ये सब रिश्ते अगर मैं बहुत लंबा खींचूं तो 100 साल के बीच के, भाई मानते हो? लेकिन इस श्लोक में कृष्ण क्या कह रहे हैं? ममेव मेरे, जैसे हम कहते मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा भाई, हमने मेरा तो लगाया, लेकिन वो मेरा एक नहीं, मेरा एक लिमिटेड पीरियड के लिए, और वो लिमिटेड पीरियड, उसकी लिमिटेशन बहुत लंबी खींचू तो 100 साल बस। उस 100 साल में हम दोनों रहें, इसकी भी गारंटी नहीं है। लेकिन चलो, हमने खींचा कितना? 100 साल, ये मेरे हैं लेकिन 100 साल। अब कृष्ण क्या करे? ममेव मेरे। अब उसने हमसे क्या रिश्ता जोड़ा है? ये बेटा, ये बेटी, ये पति, ये पत्नी, ये भाई, तो कृष्ण ने हमारे साथ क्या रिश्ता जोड़ा? ममेव अंश। अब जो हम कृष्ण के अंश हैं, जैसे हम कहते मैं इनका बेटा हूं, इनकी बेटी हूं, इनकी पत्नी हूं, इनका, ऐसे हम कृष्ण के अंश, लेकिन है क्या? जीव भूत सनातन। ये कोई 100 साल वाला रिश्ता है नहीं, कोई 40 साल वाला रिश्ता नहीं है, कोई 50 साल वाला रिश्ता नहीं है, कोई 60 साल वाला रिश्ता नहीं है, बल्कि जीव भूत सनातन। जब मैं था तो ये थे अंश मेरे, और जब तक मैं रहूंगा ये रहेंगे। मतलब ये रिश्ता सनातन है, तभी तो कहा जीव भूत सनातन। ना इस रिश्ते का आदि है, ना ही अंत है, ना ही आदि है, ना ही अंत है। तो अब ये बताओ कि हमारा जो सबसे पुराना रिश्ता है वो किससे है, और जो सबसे लंबा रिश्ता रहेगा वो किसका? कृष्ण से। कृष्ण से। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, मैं एक सिटी में गया तो उनका बच्चा बहुत बड़े स्कूल में पढ़ता था, तो वहां कल्चरल एक्सचेंज का प्रोग्राम था। कौन सा था? कल्चरल एक्सचेंज का प्रोग्राम था, मतलब यहां वो इंडियन बच्चा यूएसए में जाता था और यूएसए का बच्चा इंडिया आता था। जैसे एक का बच्चा जिसके घर गया उसी का बच्चा इसके घर आता था, इसके कहते थे कल्चरल एक्सचेंज, और वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए आते थे। तो मैं उनके घर गया तो वो बच्ची उनके घर थी, तो बिल्कुल वो उनके रंग में ऐसे ही कपड़े पहनती थी, नमस्ते कहना भी आ गया। बोला ये तो हमारे साथ पूजा पाठ में भी आती, घंटी बजाती है, फूल आरती करती है। तो फिर वो उस घर वालों को कुछ तो बोलती होगी, कुछ तो बोलती होगी। तो मैंने बोले आपको बोलती क्या? बोला दूसरे बच्चे पापा को, तो ये भी पापा ही बोलती है, और दूसरे बच्चे मुझे मम्मी बोलती है, तो ये भी मुझे मम्मी बोलती है। और किसी जो भी घर में रिश्ते हैं, किसी को भाभी बोलती, किसी को भैया बोलती है, मुझे मम्मी बोलती है और इनको पापा बोलती है। तो हाँ ठीक है, मम्मी भी है, पापा भी है, भैया भी है, भाभी भी है। और बोला हमारे साथ इंडियन ही खाना खाती है, इसको अच्छा लगता है सब। अब मैं गया तो मैंने वो बच्ची बोला वो तो अपने घर पे चली गई, वो तो अपने घर पे चली गई। समझ आई? तो यहां हम कल्चरल एक्सचेंज के अनुसार समझ लो आए हैं। जब आए हैं तो जिसके घर पे रहते हैं उनमें किसी को हम पापा भी बोलते हैं, किसी को मम्मी भी बोलते हैं, किसी को भैया भी बोलते हैं, किसी को भाभी भी बोलते हैं, और अगर ज्यादा एक्सचेंज हुआ तो किसी को पति भी बोलेंगे, किसी को पत्नी भी बोलेंगे, किसी को बच्चे भी बोलेंगे, और ज्यादा एक्सचेंज हुआ तो किसी को बहू भी बोलेंगे, किसी को दामाद भी बोलेंगे, और ज्यादा एक्सचेंज हुआ तो किसी को पोता भी बोलेंगे, किसी को पोते भी बोलेंगे। लेकिन एक वक्त जब हमारा कोई पूछेगा तो बोलेंगे चल गई, शी इज नो मोर, और ही इज नो का। बोला आपको पता नहीं? बोला 6 महीने पहले चली गई। कहां गई? जैसे वो बच्ची कहां गई? जहां से वो चली गई। ऐसे हम कृष्ण के अंश हैं, तो मैं उस दिन एक भजन सुन रहा था, हम पंछी परदेसी मुसाफिर, हम पंछी परदेसी मुसाफिर आए तुम्हारे देश में, हम पंछी परदेसी मुसाफिर आए तुम्हारे देश में। हम वो पंछी है जो परदेसी भी है और मुसाफिर भी है, यहां आए हैं। अरे समझ, तो कृष्ण ने हमारे साथ क्या जोड़ा? ममेव अंश। तुम ना बेटा हो ना बेटी हो, ना माँ हो ना भाई हो, ना बहन हो ना समधी हो ना संडू हो, तो क्या हो? अंश। और फिर तुम्हारा और मेरा रिश्ता सनातन है, था है और रहेगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो टेम्पररी रिश्ते हैं इनमें हम इतने खो गए हैं कि इनके सिवा कुछ हमें दिखता नहीं, ना ही कुछ सूझता है, क्योंकि हमने ये पूरी तरह से मान लिया है कि ये मेरे अपने हैं, और है भी टेम्पररी है भी। तो माँ बाप बहन भाई, अरे भाई मुझे फैमिली के अंदर बहुत अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है ना फैमिली के अंदर, जब मम्मी डैडी हो, अपने बच्चे हो, हस्बैंड वाइफ हो, फैमिली टाइम, पिकनिक करने जा रहे, फैमिली के टाइम जा रहे, घूमने जा रहे, वाइफ के साथ जा रहे, घूमने जा रहे, हस्बैंड के जा रहे, शॉपिंग करने जा रहे, बच्चों के साथ जा रहे हैं, तो कैसे दिन निकल जाता पता ही नहीं चलता। वो हमारे बच्चे जो हमारे कांधे पे सर रखकर वोमिटिंग करते थे, पता ऐसे करते थे तो वही दूध निकाल लेते थे और हमारी गोद में बैठ के सूसू कर जाते थे। आज देखते तो 5-6 फीट के हो गए, ये लंबे चौड़े हो गए। आज हम उनको कांधे पे उठाना चाहे तो गिर जाएंगे क्योंकि आज हम कमजोर हो चुके। तो कितने मीठे लगते हैं ना। मैं ऐसा देखता हूं कई माताएं मुझे बोलती बापू ये मेरा बेटा है, तो जब वो कहते हैं मेरा बेटा तो उसकी आंखों में एक खास चमक आती है और बड़ी खुशी उसके चेहरे पे और एक प्रकार का प्राउड आता है, इतना लंबा चौड़ा मेरा बेटा है। फिर कई स्त्रियां कहती बापू ये मेरा पति है, मेरा पति है। तो एक कितना उसको प्राउड होता मेरा पति है। फिर कई लोग आते हैं कहते बापू ये मेरी पत्नी है। और कई लोग मुझे अपने घर पे ले जाते और बोलते ये मेरा घर है, अभी अभी इसका इंटीरियर करवाया है। तो उनको घर स्वर्ग से सुंदर लगता है। तो अब हम भूल गए कि हम पंछी परदेशी मुसाफिर आए तुम्हारे शहर में, हम पंछी परदेशी मुसाफिर आए तुम्हारे शहर में आए हैं। फिर इसलिए कृष्ण कहते हैं देखो तुम किसी की मां हो तो वो तुम्हारे कर्म है, तुम किसी के पिता हो तो वो भी तुम्हारे कर्म है, तुम किसी की पत्नी हो तो वो भी तुम्हारे कर्म है, तुम किसी के पति हो वो भी तुम्हारे कर्म है। लेकिन मेरा वो रिश्ता तुम्हारा कर्म वाला नहीं है, मेरा और तुम्हारा रिश्ता कर्म का नहीं है। क्योंकि जीव भूत सनातन, जितना मैं हूं सनातन उतने ही तुम हो। और गीता में एक आया है श्लोक अगर मैं ना भूलू तो, कि सृष्टि के आरंभ में प्रेमा भक्ति माँ आई हो, हाँ बड़ी बात है। हाँ सृष्टि के आरंभ में ऐसे लिखा, तो सृष्टि के आरंभ में अव्यक्त से सब प्रकट हुए, मतलब हम सृष्टि के आरंभ में कहाँ थे, इस विराट पुरुष में ही स्थित थे, उसमें से अब प्रकट हुए और फिर सृष्टि अंत में उसी में लीन हो जाऊंगा। तो हम पंछी परदेशी मुसाफिर आए तुम्हारे देश में, इसलिए कृष्ण और आप ही वास्तविक संबंधी हो, बाकी तो सब कर्म के फल है जो भोग रहे हैं। अब वो अच्छे हैं या बुरे हैं वो एक विषय अलग है। भाई किसी की पत्नी बहुत अच्छी होती है, किसी का पति बहुत अच्छा होता है, किसी की पत्नी बहुत अच्छी होती है, किसकी तरह आप बोले हम सभी अच्छी हैं इसलिए मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा। किसी की मां बहुत अच्छी होती है, किसी के पिता बहुत अच्छे होते, किसी के भाई बहुत अच्छे होते, तो ये अच्छे क्या थे, हमारे अपने ही कर्म का फल है। और किसी का पिता हिरण्यकशिपु होता ये उसके अपने कर्म। इसलिए प्लीज अपने आप से कहना कि हम पंछी परदेसी मुसाफिर आए तुम्हारे देश में। और अगर इसको और स्पेसिफिकेशन करना हो तो हम पंछी परदेसी मुसाफिर आए तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर में तुम्हारे पुत्र बन के आए, तुम्हारी पुत्री बन के, बेटी बन के आए, तुम्हारे भाई बन के आए, तुम्हारी बहन बन के आए, तुम्हारे पोते बन के आए, तुम्हारी पोती बन के आए, लेकिन हम पंछी परदेसी मुसाफिर आए तुम्हारे द्वार पर। ऐसे भी अब क्या होगा कि आए तो हैं लेकिन रहेंगे नहीं। क्या बोला? आए तो हैं लेकिन रहेंगे नहीं, और जब रहेंगे नहीं तो जाएंगे कहां? रहेंगे नहीं तो जाएंगे कहां? जैसे देखता हूं कि सर्दियों के दिनों में साइबेरिया से पक्षी हमारे भारत की झीलों में आ जाते हैं, कितनी दूर से आते हैं और झीलों में आके खूब अपना टाइम अच्छे से बिताते हैं, लेकिन मौसम बदलते ही वो चले जाते हैं। उसमें से कुछ दुर्भाग्य होते हैं जो शिकारियों के जाल में फंस जाते हैं, वहीं रह जाते हैं, है कि नहीं? ऐसे हम आए हैं और मौसम बदलते ही चले जाएंगे। अब बहुत सारे अभागी हैं जो इस जग जंजाल में फंस जाते हैं, और ये जग जंजाल में ऐसे फंसते हैं कि वो यही भूल जाते हैं कि हम कहां से आए हैं और कहां हमें जाना है, सब भूल जाते हैं। सुबह से निकलेंगे, रात तक काम या बिजनेस या दुकान या धंधा, उस बीच उनको अपना टिफिन, अपना डब्बा, अपने भोजन खाने का भी टाइम नहीं होता है। कई लोगों को मैं देखता हूं कि जो लंच का टाइम 1:30-2 बजे का है वो 5-6 बजे लंच खाते हैं, और कभी कभी तो वो इतने व्यस्त होते हैं कि उनका जो खाने का टिफिन या डब्बा है वो वैसे का वैसा घर पे आता है, वो इतने व्यस्त है। फिर घर आएंगे तो रात का भोजन 12-1 बजे खाएंगे और फिर सो जाएंगे और सुबह 10 बजे से पहले उठेंगे। क्यों? बोला रात को देर तक जागे थे। अरे मेरे भाई, तुम अभी तक जागे ही नहीं हो। क्यों? बोला क्यों नहीं जागे? अलार्म ने उठा दिया तो हम उठ गए, जाग गए। घरवाली ने उठाया तो हम जाग गए, बच्चों ने उठाया तो हम जाग गए, काम वाली भाई ने घंटी बजाई तो हम नहीं, मैं ऐसे जागना नहीं मानूंगा। जागोगे तो उस दिन जब सदगुरु जगाएगा, से पहले तो सोए हुए हो। जब महाप्रभु ने कहा जीव जागो, जीव जागो, गौरचंद्र बोले, क्या बोला फिर? कोटि निंद्रा, क्या कोटि निंद्रा, जाओ माया पिशाच ले। अरे तुम ये भूतनी, ये पिशाचनी की गोद में सोए हुए, तुमको लगता है तुम्हारी घरवाली ने तुम्हें सुबह 9:30 बजे उठा दिया? लेकिन घरवाली ने तो 9:30 बजे उठाया, उठ के गए कहां? कहां गए? सीधे बाथरूम। उठ के गए कहां? सीधे वॉक कर रहे। उठ के गए कहां? सीधे जिम में। उठ के गए कहां? सीधे शॉप पे। उठ के गए कहां? सीधे ऑफिस में। लेकिन जिस दिन सदगुरु जगाएगा उस दिन उठ के जाओगे कहां? सत्संग में। इतना याद रखना मेरे बच्चों, मेरा गला खराब है? नहीं, बिल्कुल। बच्चे बच्चों को उठाओगे, उठा के जाके सीधे स्कूल में? आपको उठाएंगे, आप उठ के जाओगी साहब किचन में? पति को उठाओगे, उठ के जाएगा सीधा शॉप पे, दुकान पे, काम पे? लेकिन जिस दिन सदगुरु ने उठाया, उठ के जाओगे सीधे सत्संग में, उठ के जाओगे सीधे हरि कथा में, उठ के जाओगे सीधे मेरे हरि के मंदिर में जाओगे। उठ के करोगे क्या? पहला काम बाथरूम, दूसरा काम ब्रश, तीसरा काम नहाना, चौथा काम खाना, पांचवा काम जाना। लेकिन जिस दिन सतगुरु ने उठाया, उठ के गए मंगलात्री, उठ के गए ब्रह्म मुहूर्त, उठ के गए सत्संग, उठ के गए मंदिर। ये है अलार्म का उठाना, ये है घरवाली का उठाना। ऐसे घरवाली बोलती, हेलो, उठना नहीं है, सोने दो, आज छुट्टी के दिन तो सोने दो। अरे बेटा, आज छुट्टी का दिन नहीं है, तुम्हारा तो हर दिन छुट्टी का है, तुम्हें क्या पता किस दिन छुट्टी हो जाएगी। छुट्टी के दिन तो सोने दो। अरे छुट्टी के दिन तो जाग जाओ कि पता नहीं किस दिन तुम्हारी छुट्टी हो जाए। छुट्टी के दिन तो सोने दो, आज सोमवार है। ऐसे होते ना, सोमवारी, मंगलवारी, इतवारी, बुधवारी, सोमवारी, सोमवार को सोएंगे, मंगलवारी, मंगलवार को सोएंगे, बुधवारी बुध को सोएंगे, इतवारी इतवार को सोएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, आज तो छुट्टी का दिन है, सोने दो। अरे भाई, जिस दिन तुम्हारी छुट्टी होगी तो तुम्हें कोई जगाएगा ही नहीं, ना इस लायक रहोगे कि अरे भाई उठी का छुट्टी का दिन है, सोने दो, कोई तुम्हें उठाएगा भी नहीं। इसलिए प्लीज जीव जागो, जीव जागो। गौरचंद्र बोले, महाप्रभु कहते हैं, अरे जीव, जब तू कुत्ते की योनि में था तब भी तू सोता रहा अज्ञान की नींद, जब तू बिल्ली की योनि में था तब भी तू सोता रहा अज्ञान की नींद, जब तू गधे की योनि में आया तब भी तू सोता रहा अज्ञान की नींद, जब तू सुअर की योनि में आया तब भी सोता रहा तू अज्ञान की नींद, जब तू चूंटी की योनि में गया जब भी तू तब जो कीड़े की योनि में गए तब भी तू सोता रहा अज्ञान की। अब मौका आया है, जीव जागो, जीव जागो, जीव जागो। गौरचंद्र बोले, भाई जैसे एक बात बताऊं, बताऊं कि नहीं बताऊं, बताऊं? ये लोकल में जो ऐसे बेचारे सो जाते हैं ना, फिर एक अपना कोई भला आदमी कहता, सुन उठ, क्यों? स्टेशन तेरा आने वाला, स्टेशन तेरा आने वाला, उठ जा, नहीं तो चुक जाएगा तेरा स्टेशन और फिर से तुझे लंबा सफर, उठ। वो भला मानस हमको क्या करता है? उठा देता है। ऐसे अब आ रहा है आखिरी मनुष्य, फाइनल स्टेशन, तब तो उठ जा, अब भी सोया रहा, वापिस चक्कर मारा। लेकिन हम अभी भी, मुझे बेबू, मुझे बबली, मुझे बेबू, मुझे बबली, बज रही है यही डफली। और फिर गाते डफली वाले, डफली बजा मैं नाचू, अबे थके नहीं हो नाच नाच के? कि अभी भी मैं नाचू और तू नचा? अबे कुत्ते की योनि भी नाचे, गधे की योनि भी नाचे, सबकी योनि में तो नाचे। कुत्ते की योनि में कुतिया के पीछे कितने नाचे थे, गधे की योनि में गधी के पीछे कितने नाचे थे? टाइम नहीं है, नहीं तो बहुत सारे नाच बताऊं। अब तुम इंसान बने और फिर डफली वाले, डफली बजा मैं नाचू तू, अब थके नहीं हो नाच नाच के? नहीं थके, अभी भी नाचना। तो फिर जीव जागो, जीव जागो। गौर चंद्र बोले, उठ भाई अब तो उठ जा, बहुत हो गया, उठ जा। अच्छा कैसा लगे जरा सुनो तो, हम खड़े हैं, क्या खड़े, सूरत रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, जाना है मथुरा, बैठे हैं किसमें, राजधानी अगस्त क्रांति में। अब सूरत स्टेशन पे उतरे, बहुत रौनक वाला स्टेशन है, वहां हमने एक बजिया और गाठिया लिए, गुजरात में गाठिया मिलते हैं, तो हमने बजिया गाठिया लिए, और उस बजिए और गाठिए के चक्कर में हमारा 5 रुपए के लिए झगड़ा हो गया। किसके लिए? अब सच बताओ, उस 5 रुपए के लिए उलझे रहोगे या गाड़ी पकड़ लोगे? वो 5 रुपए के लिए उलझते रहेंगे या चढ़ जाएंगे? अरे बोले खड्डे में जाएंगे, 5 रुपए, राजधानी का फर्स्ट क्लास का टिकट है जो खुद में 6-7 हजार का है, और फिर जाना कहां है, मथुरा। तो समझदार तो यही कहेगा, गाए जा गीत मिलन के, तो अपनी लगन के सजन घर जाना है, या 5 रुपए के लिए उलझ हुआ। हम जो है ना, ये 5 रुपए के लिए संसार में ऐसे उलझे हैं कि परम धाम ही हाथ से निकल गया है। 5 रुपए के लिए ऐसे उलझे हैं कि हरी कथा ही हाथ से निकल गई। 5 रुपए के लिए इस संसार के रेलवे स्टेशन पे ऐसे उजले उलझे हैं कि भजन ही हाथ से निकल गया, है कि नहीं? समझ जाओ, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे। कश्मीर भी कश्मीर में रहेगा, स्विट्जरलैंड भी स्विट्जरलैंड में रहेगा, लंदन भी लंदन में रहेगा, महाबलेश्वर भी महाबलेश्वर में रहेगा, लोनावाला भी लोनावाला में ही रहेगा। हो सकता 10-20 बिल्डिंगें और बड़ी बड़ी बन जाए। ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, लेकिन अफसोस हम ना होंगे। तो हम ना होंगे तो फिर कहां होंगे? अफसोस हम ना होंगे तो, ना होंगे तो फिर कहां होंगे? कोई ठिकाना ढूंढ के रखा है? तुमने आज तक सबको खुश करने की कोशिश की। सुनो मेरी, कान खोल के बात, फिर मैं आज सत्संग को विराम देता हूं। तो हमने सबको खुश करने की कोशिश की। बाबा जिंदगी में सबको खुश करने की कोशिश की, लेकिन जो खुश हुए वो अपने नहीं थे, और जो अपने थे वो कभी खुश ही नहीं हुए। हमने सबको खुश करने की कोशिश की, लेकिन जो खुश हुए वो अपने ही नहीं थे, और जो अपने थे वो खुश ही नहीं हुए। बस यही जिंदगी है कि हमने सबको खुश करने की कोशिश की, लेकिन जो खुश हुए वो अपने नहीं थे, जो अपने थे वो खुश ही नहीं हुए। और ऐसी आपाधापी में एक दिन न्यूज आई, ही इज नो मोर। आजकल तो व्हाट्सएप पे फोटो आ जाता, कैसा एक राउंड होता है, 2-4 फूल इधर उधर होते हैं, उस राउंड में फोटो और 3 अगरबत्ती इधर 3 अगरबत्ती इधर, ये एक पूरा फॉर्मेट बना हुआ है, उसमें किसी का भी फोटो सेट कर दो और आ गया वो, क्या बोलता, सेड डिसमिस, ऐसे बोलते ना, सेड डिसमिस, सेड डिमाइस, सेड डिमाइस, फिर 1935, मतलब 1935 में पैदा हुआ, अरे बहुत बाबा लंबा जिया, लेकिन फिर भी गया तो सही, बिफोर पार्टीशन ही पैदा हुआ भाई, 1942, एक लड़की ने देखा तो ऐसा लगा, फिर कैसा लगा, एक लड़की ने देखा तो ऐसा लगा, कैसे लगा, बुढ़ापे में पता पड़ा, बहुत बुरा लगा, देखा ना होता तो ये होता ही नहीं। हम दूसरों को देख के खुश होते हैं, जो अपने हैं तो बोलो बच्चों, हमने सबको खुश करने की कोशिश की, जो खुश हुए वो अपने ना थे और जो अपने थे वो खुश ही नहीं हुए। तो अंत में लट खाए बोरड़ो, माल खाए बोरा। इसलिए कोशिश करो, मैं नहीं कहता हूं इनको खुश ना करो, लो आपको हार्ट फेल हो जाएगा। मां बबली की खुश ना क्या भाई करो ना, मां बब्बू के खुश ना करो, करो भाई किसने रोका। मैं बब्बू के अरे भाई करो ना, अभी तो बब्बू की शादी कर रही है मेरे को, करो भाई किसने रोका। बस एक लड़की ढूंढ रही हो कोई चांद जैसी हो, भगवान से डरो, अभी हम चांद पे गए पता चला चांद जैसी घरवाली हो। मेरे पास केस आते, मैं सच बोलता हूं, पहले मुझे बोलेंगे बापू ऐसी अच्छी लड़की मिली। अच्छा कभी कभी तो मुझे फोटो भी दिखाएंगे, अब फोटो में तो लड़की, अच्छा फोटो कैसे आते हैं, खूब मेकअप वेकअप करके ठाकुर फोटो स्टूडियो, उस पर फिल्टर विल्टर भी लगे होते हैं ना बाबा, तो मुझे फोटो दिखाएंगे, अब मैं क्या बोलूं अच्छी लड़की। लड़का कैसे बापू, अच्छा लड़का, हम तो यही बोलेंगे बस, बधाई हो लड़की बापू चंद्रमुखी मिली है। कौन सी मुखी है, कौन सी मुखी, चंद्रमुखी लड़की मिली है। इतना बड़ा तो मैं, आजकल तो टोकरे आने लगे, उस टोकरों के अंदर वेफर होंगे, बिस्कुट होंगे और कहते सब शुगर फ्री है। इतना बड़ा टोकरा क्यों, बोला चंद्रमुखी लड़की मिली। फिर शादी के बाद कुछ महीनों, अभी मेरे पास फोन दो चार आए, नाम नहीं बताऊंगा, शादी के 6 महीने भी नहीं हुए तो लड़की सूर्यमुखी हुई और एक दो बच्चे के बाद तो ज्वालामुखी हो गई। अब उस संभलने से भी नहीं संभलती है और ऐसी ज्वालामुखी हुई कि हम तो जलने लगे। हमने बब्बू को भी कहा, बब्बू तू भी वन जान, तू पहो घर बसा, बाबा असा हिंसा गड ना रही सकंत, बेबू तू भी वन। पहले वो कुछ लाई थी, अभी तो लेके भी गई, लड़की को भी लेके गई और जो हमने बचाया था वो भी लेके गई, क्योंकि हमने तो लड़के को दिया था लेकिन इनडायरेक्ट तो वो लेके गई। नाच मेरी बुलबुल सुनो बुलबुलो, हम बुलबुल हैं इसकी ये गुलस्तिया हमारा, वाह वाह क्या तो कवियों ने कविता बोली, सारे जहां से अच्छा वाह भाई वाह। इसलिए आज समझ आ रही है कोई मेरी बात, क्या समझ में आई कि अलार्म उठाता है तो बाथरूम जाते हैं, पत्नी उठाती है तो शॉप पे जाते हैं, उठी अरे सुनो शॉप पे नहीं जाना, क्या टाइम हुआ 11:30, अरे मेरी सत्संग भी गई। बोला ठीक है भी गई तो क्या, उठो तो सही, इधर गए उधर गए, लेकिन जिस दिन सतगुरु उठाता है उस दिन सीधे कृष्ण के पास आते हैं। कितना याद है ये, आज अगर हम कृष्ण के पास राधा वृंदावन चंद्र के पास उठ के आए हैं तो उठाने वाला कोई जागा हुआ था, क्योंकि सोया हुआ किसी सोए हुए को उठा ही नहीं सकता, जागा हुआ ही किसी सोए हुए को जगा सकता है। कुछ ज्यादा ना बोलो तो अच्छा है, गला खराब है तो कल हम इस पे और भी बोलेंगे, लेकिन सच बताओ भगवान को साक्षी रख के ऐसे मेरी बातें सच है कि नहीं, बोलो मैंने जो सच कहा वो दिल को नहीं लगता है, बिल्कुल लगता है, मेरे को तो लगा सच्चा लगा कि हम पर पंछी परदेसी मुसाफिर आए तुम्हारा देश और फिर कब उड़ के चले जाएंगे, फिर गाना बजेगा चल उड़ जा रे पंछी के, अब ये खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पे तेरा बसेरा था, उठ उड़ जा। जब चलो उठ गए, अब उठ के जाएं कहां? लेकिन हमें मेरे राधा वृंदावन चंद्र की कृपा से, मेरे गुरु महाराज की कृपा से इतना तो पता है कि उठ भी गए तो उठ के जाएंगे कहां, ये तो पक्का पता है, क्योंकि हमारे हाथ में वीजा भी है और टिकट भी है। ये हरि नाम, हरे कृष्णा, ये वीजा भी है और टिकट भी है। और ये टिकट कब काम आएगा? जब यहां से टिकट कटेगा। कहते नहीं इसका टिकट, जिस दिन यहां से टिकट कटा तब ये टिकट काम आएगा। इसलिए भाई, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं आपके भले की योजनाएं बता रहा हूं। पहली योजना ये है कि आप भजन करो। दूसरी योजना है राधा वृंदावन चंद्र की सेवा करो। बेटा इस थैली में क्या है? भगवद गीता। और जोर से ताली बजा। मैं कहता हूं हाँ बेटा, बैठो बैठो बैठो, कुछ दूंगा नहीं है नहीं। ये स्थान जो भी है, इस स्थान में जो भी हो रहा है ना, वो आपको नहीं पता है कि क्या हो रहा है। या छोटे छोटे बच्चे गीता लेके घूम रहे हैं, कितनी बड़ी बात करती। मैंने पूछा क्या? बोला भगवद गीता। 5-6-7 साल की बच्ची गीता लेके घूम रही है। और सुनो, ओ भाई साहब, कई ऐसे देश होते हैं, मैं ऐसे कई अरबियों को देखता हूं, वो चीता लेके घूमते हैं। देखा है कभी? टाइगर, टाइगर उसके गले में एक बड़ी सी जंजीर होती है। एक और देश भी है, नाम नहीं लूंगा, वहां भी लोगों को ऐसा बहुत पालने का शौक है। वो ऐसा लेके घूमते क्या? चीता। कुछ लोग कुत्ता लेके घूमते हैं, कुछ लोग बिल्ली लेके घूमते हैं, और बहुत बड़े दिल वाले होते तो वो चीता लेके घूमते हैं। लेकिन जिन पे मेरे हरि की कृपा हो वो गीता लेके घूमते हैं। समझ आई बच्चू? और यहीं विराम दे रहा हूं, समझे ने? कोई कुत्ता लेके घूमता है, कोई बिल्ली लेके घूमता है, और कोई बहुत बड़ा तवंगर होता है तो वो चीता लेके घूमता है। लेकिन जिन पे मेरे हरि की कृपा है वो तो गीता लेके घूमता है।
श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताय गौर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय।